अध्याय 65 यहोशु और स्वर्गदूत। यदि वह पर्दा जो दृश्य को अदृश्य संसार से जुदा करता है उठाया जा सके और परमेश्वर के लोग उस महान वाद विवाद को जो मसीह और उसके दूतों और शैतान और उसकी दुष्ट सेना के बीच मनुष्य के उद्धार के लिए जारी है देख सकते, यदि वे आत्माओं को पाप के बंधन से बचाने के उस आश्चर्यजनक कार्य को और दुष्ट की ईर्ष्या से उनकी रक्षा निमित्त उसकी परमेश्वर की शक्ति के निरंतर उपयोग को समझ सकते, तो वे शैतान की युक्तियों का सामना करने को अच्छी तरह तैयार हो जाते। त्राण की योजना के विस्तार और महत्व के और मसीह के साथ सहकारी होने के नाते उस काम की श्रेष्ठता के सामने उनके मन गंभीर होते। वे नम्र व दीन होते और फिर भी यह जानते हुए कि समस्त स्वर्ग उनके त्राण में दिलचस्पी रखता है, शैतान के और मसीह के काम का और लोगों पर दोष लगाने वाले को पराजय करने में हमारे मध्यस्थ के सामर्थ्य का एक प्रभावशाली तथा चित्ताकर्षक उदाहरण ज़करियाह नबी की भविष्यवाणी में दिया गया है। पवित्र दर्शन में नबी ने यहोशु महायाजक को कुचैले वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के दूत के सामने खड़े देखा तो अपने लोगों की सख्त तकलीफ के समय परमेश्वर की कृपाओं के लिए विनती कर रहा है। शैतान उसके दाहिने हाथ विरोध करने को खड़ा है। महायाजक अपने तई अथवा अपने लोगों को शैतान के अभियोगों से बचा नहीं सकता। वह ये दावा नहीं करता कि इज़राइल निर्दोष है। मैले कुचैले वस्त्र से लोगों के पापों का प्रतिरूप प्रकट करके, जिन्हें वह लोगों के प्रतिनिधि के रूप में उठा रहा था, वह दूत के सामने खड़ा होके उनके अपराधों को मानकर फिर भी उनकी दीनता तथा पश्चाताप की ओर संकेत करता है और पाप क्षमा करने वाले त्राणकर्ता के अनुग्रह पर भरोसा रखते हुए विश्वास में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करता है। तब दूत जो स्वयं मसीह और पापियों का त्राणकर्ता है, अपने लोगों पर दोष लगाने वाले का मुंह बंद कर देता है और यह घोषणा करता है, हे शैतान, यहोवा तुझको बुड़क। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं? ज़करियाह 3:2। जैसे यहोशु के मध्यस्थ का कार्य स्वीकार हुआ, तैसे ही यह आज्ञा निकाली, इसके ये कुचैले वस्त्र उतारो। और यहोशु से स्वर्गदूत यह घोषणा करता है, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और तुझे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। सो उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। ज़करियाह 3:4-5। उसके निजी पाप और उसकी कौम के पाप क्षमा किए गए। इसराइलियों को नया वस्त्र पहनाया गया। मसीह की धार्मिकता उनके हिसाब में लगाई गई। जिस प्रकार शैतान ने यहोशु और उसके लोगों पर दोष लगाया, उसी प्रकार वह उन पर दोष लगाता है जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह की खोज कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह भाइयों का दोषदायक जो रात दिन हमारे ईश्वर के आगे उन पर दोष लगाता था। प्रकाशित वाक्य 12:10। करके दोषित किया गया है हर आत्मा के ऊपर जो अधर्म की शक्ति से छुड़ाई गई है और जिसका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में दर्ज है, वाद विवाद दोहराया जाएगा। शैतान के कुटुंब से परमेश्वर के कुटुंब में जब कभी कोई जन स्वीकार किया जाता है, तो यह दुष्ट आत्मा के दृढ़ विरोध को उभारे बगैर नहीं होता। शैतान परमेश्वर को खोजियों के पापों से क्रोधित होकर उन पर दोष नहीं लगाता। वह उनके दोषपूर्ण चरित्र से बहुत प्रसन्न होता है। उनके परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन से ही वह उनके ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकता है। मसीह से बैर रखने ही के कारण उसके अभियोग उत्पन्न होते हैं। त्राण की योजना द्वारा यीशु मानव परिवार के ऊपर शैतान के कब्जे को तोड़ रहा है और उसके अधिकार से आत्माओं को छुड़ा रहा है। प्रधान विद्रोही की घृणा व द्वेष भड़क जाती है जब वह मसीह की प्रधानता के प्रमाण देखता है और पैशाचिक शक्ति तथा चतुराई से वह उसके हाथ से उन मनुष्यों की शेष संतान को छीन लेने की कोशिश करता है। उन्होंने त्राण को स्वीकार किया है।
वो लोगों को नास्तिकता की ओर ले जाकर उनके विश्वास को परमेश्वर से हटा देता है, उसके प्रेम से अलग कर देता है। वो उनको उसकी व्यवस्था तोड़ने का प्रलोभन देता है, फिर उनको कैदी करने का दावा करता है और उनको अपने हाथ से छीन लिए जाने में मसीह के अधिकार पर वाद विवाद करता है। वो जानता है कि जो लोग परमेश्वर से क्षमा और अनुग्रह उत्साहपूर्वक मांगते हैं, वे उन्हें मिलते हैं। इसलिए वो उन्हें निरुत्साह करने के लिए उनके पापों को उनके सामने रखता है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन करने की कोशिश करते हैं, वो उनके विरुद्ध निरंतर मौका ढूंढता रहता है, यहां तक कि वो उनके उत्तम से उत्तम और स्वीकार करते योग्य सेवाएं भ्रष्ट जैसे दिखलाने की कोशिश करता है। अनगिनत धूर्ततम और कठोरतम युक्तियों द्वारा वो उन पर दंड की आज्ञा निश्चित करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य इन दोषों का मुकाबला स्वयं नहीं कर सकता। अपने पाप रंगे वस्त्र में अपराधों को मानते हुए वो परमेश्वर के सामने खड़ा है, परंतु यीशु हमारा वकील उन सबके पक्ष में जिन्होंने पश्चाताप और विश्वास द्वारा अपनी आत्माओं को उसको सुरक्षा में सौंप दिया है, एक प्रभावशाली विनय पेश करता है। वो उनके मनोरथ की सिफारिश करता है और उन पर दोष लगाने वाले को कलवरी की जबरदस्त दलील से परास्त करता है। क्रूस की मृत्यु तक उसकी ओर से परमेश्वर की व्यवस्था की पूर्ण आज्ञाकारिता ने उसको स्वर्ग में और पृथ्वी में सारा अधिकार दिलाया है, और वो अपने पिता से अपराधी मनुष्य के लिए करुणा और मेल मिलाप का दावा करता है। अपने लोगों पर दोष लगाने वाले को वो कहता है, हे शैतान, यहोवा तुझको घुरके, ये मेरे रक्त से मोल लिए हुए लोग हैं, आग से निकाली हुई लुकटी। विश्वास के साथ उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको ये शांतिदायक आश्वासन दिया जाता है, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया और तुझे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। सब जिन्होंने मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहना है, वे उसके सामने चुने हुए विश्वस्त और सच्चे लोग जैसे खड़े होंगे। शैतान को उन्हें मसीह के हाथ से छीनने का कोई अधिकार न होगा। जिस आत्मा ने पश्चाताप और विश्वास द्वारा उसकी शरण का दावा किया है, मसीह उसको शत्रु के अधिकार में कभी न जाने देगा। उसने वचन दिया है, वो मेरे साथ मेल करने को मेरी शरण ले, वो मेरे साथ मेल करे। यशाया 27:5। जो प्रतिज्ञा यहोशू से की गई वो सबके लिए है, यदि तू जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे तो मैं तुझको इनके बीच में जो पास खड़े हैं आने जाने दूंगा। जकरिया 3:7। परमेश्वर के दूत इस पृथ्वी में भी उनके दोनों ओर चलेंगे और अंत में वे स्वर्गदूतों के बीच खड़े होंगे जो परमेश्वर के सिंहासन को घेरे हुए हैं। इस तथ्य द्वारा कि परमेश्वर के स्वीकृत लोग उसके सन्मुख मैले कुचैले वस्त्र पहने प्रदर्शित किए गए हैं, परमेश्वर के नाम से कहलाने वाले लोगों की दीनता तथा हृदय टटोलने की ओर अग्रसरी होनी चाहिए। जो लोग सचमुच अपनी आत्माओं को सत्य पालन द्वारा शुद्ध कर रहे हैं, वे अपने को बहुत दीन समझेंगे। जितनी निकटता से वे मसीह का निर्दोष चरित्र देखेंगे, उतना ही दृढ़ उनकी इच्छा उसके स्वरूप के अनुसार बनने की होगी, और उतना ही कम वे अपनी पवित्रता व शुद्धता की ओर ध्यान देंगे। परंतु जब हम अपनी अपराधी स्थिति को महसूस करते हैं, तो उस समय हमें मसीह को अपनी धार्मिकता, पवित्रता तथा त्राण स्वरूप स्वीकार करना चाहिए। शैतान के अभियोगों का हम उत्तर नहीं दे सकेंगे, केवल मसीह ही हमारे पक्ष में प्रभावशाली निवेदन कर सकता है। वही दोष लगाने वाले का मुंह उन तर्कों द्वारा बंद कर सकता है जिनकी बुनियाद हमारे नहीं किंतु उसी के सद्गुणों पर पड़ी है। शेष मंडली। यहोशू और दूत के संबंध में जो दर्शन जकरिया को दिखाई दिया, वो परमेश्वर के लोगों से अनुभव पर प्रायश्चित के बड़े दिन के समाप्त होने के समय विशेष प्रभाव के साथ लागू होता है। शेष मंडली के ऊपर बड़ी परीक्षा और संकट आएगी। आज्ञा पालन करने वाले और यीशु के ऊपर विश्वास रखने वाले अजगर और उसकी सेना के क्रोध को महसूस करेंगे। शैतान संसार के लोगों को अपनी प्रजा में शुमार करता है। उसने धर्मच्युत मंडलियों के ऊपर नियंत्रण जमा रखा है, परंतु यहां पर एक छोटा सा दल है जो उसके प्रभुत्व का विरोध करता है। यदि वो उनकी हस्ती मिटा सके तो उसकी विजय सिद्ध हो जाएगी। जिस प्रकार उसने मूर्ति पूजक जातियों को इसराइलियों को नाश करने को उभारा था, इसी प्रकार निकट भविष्य में वो परमेश्वर के लोगों को नाश करने को जगत के दुष्ट शासनकर्ताओं को उभारेगा। सारे लोगों से परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन के प्रति मानव फरमानों के पालन की मांग की जाएगी। जो लोग परमेश्वर के प्रति और कर्तव्य कर्म में सच्चे रहेंगे, उनको धमकियां दी जाएंगी। दोषी ठहराए तथा वधयोग्य ठहराए जाएंगे या देश निष्कासन किए जाएंगे। उनके साथ माता पिता, भाइयों तथा सगोत्रियों और मित्रों द्वारा विश्वासघात का बर्ताव किया जाएगा। उनकी एकमात्र आशा परमेश्वर की करुणा पर ही होगी, उनकी एकमात्र रक्षा प्रार्थना पर। जिस प्रकार यहोशू दूत के सामने गिड़गिड़ा रहा था, इसी प्रकार शेष मंडली नम्र हृदय तथा जोशीले विश्वास से यीशु वकील के द्वारा क्षमा तथा छुटकारे के लिए विनती करेगी। वे अपने जीवन की अधर्मता से पूर्णतः अभिज्ञ हैं। वे अपनी निर्बलता और अयोग्यता देखते हैं, और जब वे अपने ऊपर नजर करते हैं तो तुरंत निराश हो जाते हैं। प्रलोभनकर्ता उन पर दोष लगाने को निकट खड़ा हो जाता है, जिस तरह वो यहोशू के पास विरोध करने को खड़ा था। वो उनके कुचैले वस्त्रों को, उनके दोषपूर्ण चाल चलन को दिखलाता है। वो उनकी निर्बलता व मूर्खता को, कृतघ्नता के पाप को और मसीह की असदृशता को दिखलाता है, जिनसे उद्धारकर्ता का अनादर हुआ है। वो आत्माओं को इस ख्याल से डराने की कोशिश करता है कि उनकी परिस्थिति असाध्य है और उनकी अशुद्धता का दाग कभी नहीं धुल सकता। वो उनके विश्वास को ऐसे नष्ट करने की आशा करता है कि वे उसके प्रलोभनों में फंसकर परमेश्वर की अधीनता से हट जाएं और पशु की छाप ले लें। शैतान उनके विरुद्ध परमेश्वर के सामने दोष लगाता है और घोषित करता है कि पाप करने के कारण उनका ईश्वरीय रक्षा का हक जाता रहा, और दावा करता है कि उसको उन्हें आज्ञा तोड़ने के कारण नाश करने का अधिकार है। वो उनको अपनी तरह परमेश्वर की दया से वंचित रहने का अधिकार घोषित करता है। वो कहता है कि क्या ये वे लोग हैं जो स्वर्ग में मेरी जगह और उन दूतों की जगह लेंगे जो मेरे साथ हो लिए थे? जब वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने का दावा करते हैं, तो क्या उन्होंने उसके सिद्धांतों का पालन किया है? क्या वे ईश्वर से अधिक सुख विलास को ही प्रिय जानने हारे न थे? क्या उन्होंने अपने हितों को उसकी सेवा से बढ़कर न जाना? क्या उन्होंने सांसारिक वस्तुओं को अधिक प्रिय न समझा? उन पापों को देखिए जो उनके जीवन में स्पष्ट दिखाते हैं। उनकी स्वार्थपरता, उनकी ईर्ष्या, उनको एक दूसरे की ओर घृणा को देखिए। अनेक हालतों में परमेश्वर के लोग दोषी रहे हैं। शैतान को उनके पापों का सही सही ज्ञान है कि कहां कहां उसने प्रलोभन में डालकर उनसे पाप करवाए हैं, और वो उनको अतिशयोक्ति के प्रकाश में पेश करता है और घोषित करता है, क्या परमेश्वर मुझको और मेरे दूतों को अपने सामने से निकाल देगा और उनको पारितोषिक देगा जो उसी प्रकार के कुकर्मों के कारण दोषी ठहरे हैं? हे परमेश्वर, तू न्यायानुसार ऐसा नहीं कर सकता। न्याय की मांग है कि उनको दंडाज्ञा दी जाए, परंतु ये सच है कि मसीह के अनुयायियों ने पाप किया है, फिर भी उन्होंने अपने तई दुष्टता के अधिकार में नहीं दिया है। उन्होंने अपने पाप अपने से अलग कर दिए और परमेश्वर को नम्रता से और दीनता से ढूंढा है, इसलिए ईश्वरीय वकील उनके पक्ष में सिफारिश करता है। उनकी कृतघ्नता से जिसका अधिक अपमान हुआ है, जो उनके अपराधों से और उनके पश्चाताप से अभिज्ञ हैं, कहता है, हे शैतान, यहोवा तुझको घुरके, मैंने इन आत्माओं के लिए अपनी जान दी, ये मेरे हाथ की हथेली में खुदे हुए हैं, मसीह की धार्मिकता के वस्त्र से ढके हुए हैं।
जब परमेश्वर के लोग अपनी अपनी आत्माओं को दुख देंगे और मन की शुद्धि के लिए दुहाई देंगे, उसी समय ये आज्ञा निकलेगी, इनके ये कुचले वस्त्र उतारो, और ये उत्साहपूर्ण वचन कहे जाएंगे, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और तुझे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। मसीह की धार्मिकता का निर्दोष वस्त्र परमेश्वर के परीक्षित, आजमाए हुए तो भी विश्वस्त बच्चों को पहनाया जाएगा। तुच्छ समझे गए शेष मंडली के लोग तेजस्वी वस्त्र पहने होंगे, जो दुनिया की भ्रष्टता से कभी अशुद्ध न किए जाएंगे। उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में से न मिटाए जाएंगे और सारे युगों के विश्वासियों में भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने धोखेबाज की छलबाजियों का विरोध किया है। वे अजगर की गर्जनों द्वारा प्रभु भक्ति से नहीं मुड़े हैं। अब वे प्रलोभनकर्ता की युक्तियों से सर्वदा के लिए सुरक्षित हैं। उनके पाप पापों के उत्पादक के मत्थे मढ़े जाएंगे। शेष लोगों को केवल क्षमा और स्वीकृति ही नहीं दी जाएगी, किंतु वे सम्मानित भी होंगे। उनके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाएगी। वे परमेश्वर के लिए राजा
और याजक सदृश होंगे। जब शैतान अपने दोषों के लिए अनुरोध कर रहा और इस दल को नष्ट करने की चेष्टा कर रहा था, तो उस समय पवित्र अदृश्य दूत इधर उधर जाकर उन पर जीवित परमेश्वर की छाप लगा रहे थे। ये वे हैं जिनके माथों पर पिता का नाम लिखा हुआ है और मेमने के साथ सैहून पर्वत पर खड़े हैं। वे सिंहासन के सामने नया गीत गाते हैं, वो गीत जिसे कोई मनुष्य नहीं सीख सकता सिवाय 144,000 के जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। प्रकाशित वाक्य 14 आयत 4-5।